लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। पोप लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना के लिए एकत्रित श्रद्धालुओं को संबोधित किया और उन्हें हे हमारे पिता की प्रार्थना के महत्व की याद दिलाई तथा इस बात पर जोर दिया कि प्रभु सदैव हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमें उनकी अच्छाई को भी अपनाना होगा। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 27 जुलाई को विश्व नाना नाने एवं बुजुर्गों के दिवस के अवसर पर पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro.
आज का सुसमाचार पाठ यीशु को प्रस्तुत करता है जो अपने शिष्यों को हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखलाते हैं, एक ऐसी प्रार्थना जो सभी क्रिश्चियनों को एक साथ लाता है। इसमें प्रभु हमें बच्चों की तरह अब्बा पिताजी कहकर ईश्वर को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सरलता, पुत्रवत विश्वास, साहस, प्रेम किए जाने की निश्चितता के साथ, संत पापा ने कहा। इस संबंध में कातिकलिसा की धर्म शिक्षा बड़े ही खूबसूरत ढंग से कहती है कि प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से हम खुद को भी प्रकट करते हैं, जबकि पिता हमारे लिए प्रकट होते हैं। और यह सच है, जितना अधिक हम स्वर्ग में पिता से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उतना ही अधिक हम स्वयं को प्रिय संतान के रूप में पाते हैं और उतना ही अधिक हम उनके प्रेम की महानता को समझते हैं। संत पापा ने सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए कहा, आज का सुसमाचार पाठ कुछ विचार उत्तेजक छवियों के माध्यम से ईश्वर के पितृत्व के गुणों का वर्णन करता है। पिता ईश्वर उस व्यक्ति के समान है जो अपने मित्र की सहायता करने के लिए आधी रात को उठता है और एक अप्रत्याशित आगंतुक का स्वागत करता है, अथवा उस माता पिता के समान जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने का ध्यान रखता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वे कभी हमसे मुख नहीं मोड़ते, भले ही हम उनके द्वार पर दस्तक देने देरी से पहुंचे, शायद गलतियों, छूटे हुए अवसरों या असफलताओं के बाद, अथवा भले ही हमारा स्वागत करने के लिए उससे घर में सो रहे अपने बच्चों को जगाना पड़े। वास्तव में कलीसिया के महान परिवार में पिता अपने सभी प्रेमपूर्ण कार्यों में भाग लेने से नहीं हिचकिचाते। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे हमेशा हमारी सुनते हैं और कभी कभी हमें ऐसे तरीकों से उत्तर देते हैं जिन्हें समझना कठिन होता है, तो इसका कारण है कि वे हमारी समझ से परे अधिक बुद्धिमत्ता एवं ईश्वरीय कृपा से कार्य करते हैं। इसलिए संत पापा ने कहा कि इन क्षणों में भी आइए हम प्रार्थना करना ना छोड़ें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, उनमें हमें हमेशा प्रकाश एवं शक्ति मिलेगी। इसके अलावा ही हमारे पिता की प्रार्थना द्वारा हम ईश्वरीय पुत्रत्व के अनुग्रह का उत्सव मनाने के अलावा इस उपहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त करते हैं। मसीह में भाइयों के समान एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कलीसिया के एक आचार्य ने इस पर विचार करते हुए लिखा है, जब हम ईश्वर को अपना पिता कहते हैं तो हमें पुत्रों के समान व्यवहार करने के अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। दूसरे आगे कहते हैं, यदि आप एक क्रूर एवं अमानवीय हृदय रखते हैं तो आप हर प्रकार की भलाई के ईश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते। उस स्थिति में वास्तव में आपके भीतर स्वर के पिता की भलाई की छाप नहीं रहती। ईश्वर से पिता कहकर प्रार्थना करने के बाद हम दूसरों के प्रति कठोर और असंवेदनशील नहीं हो सकते, बल्कि यह जरूरी है कि हम स्वयं को उनकी भलाई, उनके धैर्य, उनकी दया से रूपांतरित होने दें, ताकि दर्पण की तरह उनका चेहरा हमारे अंदर प्रतिबिंबित हो। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज की धर्म विधि हमें प्रार्थना एवं उदारता के साथ प्रेम का अनुभव करने और ईश्वर की तरह उपलब्धता, विवेक, आपसी देखभाल और बिना किसी हिसाब किताब के प्रेम करने के लिए आमंत्रित करती है। आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि हम इस आह्वान का उत्तर दे सकें और पिता के मुख की मधुरता प्रकट करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित का आशीर्वाद दिया।
Angelus Domine nunciavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। सर्वप्रथम उन्होंने दादा दादी और बुजुर्गों के विश्व दिवस की याद कर कहा,
Oggi si celebra la quinta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
आज हम दादा दादी एवं बुजुर्गों का पांचवां विश्व दिवस मना रहे हैं, जिसकी विषय वस्तु है, धन्य है वे लोग जिन्होंने आशा नहीं खोई। हम दादा दादी और बुजुर्गों को आशा के साक्षी के रूप में देखते हैं, जो आने वाले पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करते। आइए हम उन्हें ना त्यागें, बल्कि उनके साथ प्रेम और प्रार्थना का संबंध बनाएं। उसके बाद संत पापा ने उन लोगों की विशेष याद की जो युद्ध या अन्य कारणों से पीड़ित हैं। उनके लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मैं गजा में गंभीर मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ, जहाँ नागरिक भूख से त्रस्त हैं और हिंसा एवं मौत के खतरे में हैं। मैं युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय कानूनों के पूर्ण सम्मान के लिए अपनी हार्दिक अपील दोहराता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर प्रदत्त एक अंतर्निहित गरिमा होती है। मैं सभी संघर्षरत पक्षों से आग्रह करता हूँ कि वे इस गरिमा को पहचाने और इसके विरुद्ध कोई भी कार्य न करें। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे सभी लोगों के लिए शांति के भविष्य हेतु बातचीत करें और ऐसी हर चीज को अस्वीकार करें जो इससे खतरे में डाल सकती है। संत पापा ने संघर्षों के निर्दोष पीड़ितों और उन सरकारों को शांति की रानी मरियम को सिपोर्ट किया जिनके पास युद्ध समाप्त करने की शक्ति है। उसके बाद संत पापा ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर संघर्षों में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, दुनिया भर में संघर्ष एवं हिंसा से पीड़ित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं विशेष रूप से थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर संघर्षों में फंसे लोगों, खासकर बच्चों और विस्थापित परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। शांति के राजकुमार सभी को संवाद एवं मेल मिलाप की दिशा में प्रेरित करे। उसके बाद संत पापा ने दक्षिणी सीरिया की याद करते हुए हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। तत्पश्चात संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से सीधा प्रसारण कर रहे वैटिकन रेडियो के पत्रकारों को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा, मैं वैटिकन रेडियो वैटिकन न्यूज का अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने जयंती वर्ष के दौरान श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों के और करीब रहने के लिए बेरनीनी के स्तंभ के नीचे लो सल्वातोरे रोमानो के साथ एक छोटा स्टेशन खोला है। इतनी सारी भाषाओं में आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, जिससे पोप की आवाज दुनिया तक पहुंचती है, और उन सभी पत्रकारों का भी धन्यवाद जो शांति और सत्य के संचार में योगदान देते हैं। इसके बाद संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने नाना नानी एवं बुजुर्गों तथा युवाओं का विशेष रूप से अभिवादन किया। जयंती मनाने के लिए रोम में एकत्रित युवाओं को संबोधित कर उन्होंने कहा, मैं युवाओं की जयंती के लिए रोम में एकत्रित विभिन्न देशों के युवाओं का विशेष स्नेह के साथ अभिवादन करता हूं। मुझे आशा है कि यह आप सभी के लिए मसीह से मिलने और उनके द्वारा अपने विश्वास और निरंतर उनके अनुसरण की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक अवसर होगा। तत्पश्चात संत पापा ने रविवार को माता मरियम की शोभा यात्रा में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आज रात तैबर नदी पर फ्यूमारोला की माता मरियम का जुलूस निकाला जाएगा। इस खूबसूरत मरियम परंपरा में भाग लेने वाले लोग यीशु की माता से अपने दैनिक जीवन में सुसमाचार का पालन करना सीखें। और अंत में संत पापा ने कहा, मैं सभी को रविवार की शुभकामनाएं देता हूँ।
A tutti auguro una buona domenica.
आओ परम पिता के द्वार है जग में वो प्यारा, उसकी प्रेमी छाया में है पला जीवन संसार।
बोल जीवन दाता की, बोल जय जय जय। बोल जीवन दाता की, बोल जय जय जय।
दोष अगर हो दिल में तो देख न पाओगे उसको, दोष अगर हो दिल में तो देख न पाओगे उसको। पहले मन को शुद्ध करे खोजत जो उसको, पहले मन को शुद्ध करे।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। फ्रांस के जैमविले में आज समाप्त हो रहे क्लेमर्स सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए संत पापा लियो 14वें ने फ्रांसीसी गाइडों और स्काउट्स को पत्र लिखकर उनसे सृष्टि की पुकार सुनने का आग्रह किया। जैव विविधता के नुकसान को दूर करने के लिए पारिस्थितिकी शिक्षा की आवश्यकता है, साथ ही वैश्विक असमानताओं, पीने के पानी की कमी और कई आबादी के लिए ऊर्जा की पहुंच को भी कम करने की आवश्यकता है। यह तत्काल आवश्यकता जिसमें संपूर्ण मानवता शामिल है, यह सृष्टि की पुकार को सुन रही है। बढ़ती हुई गंभीर पर्यावरणीय तबाही हमारी अंतरात्मा को गंभीर रूप से चुनौती दे रही है। संत पापा लियो 14वें ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया, यह सभा एक अधिक न्यायपूर्ण और स्थायी विश्व पर चिंतन के लिए आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना, सामान्य भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना और परिवर्तन के वाहक बनना, स्काउटिंग को जलवायु परिवर्तन की सेवा में लगाना था। संत पापा युवाओं को समझाते हैं कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता की हानि, जीवन की गिरावट और सामाजिक पतन, वैश्विक असमानताएं, कई आबादियों के लिए पेयजल और ऊर्जा की कमी के मद्देनजर पारिस्थितिकी की शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, ताकि चीजों के क्रम को उल्टा जा सके। इस प्रकार क्लेमर्स सभा हमें अपने साझा घर की रक्षा करने के नए रास्ते और दिशाएं समझाने और खोजने का अवसर देती है। संत पापा ने जोर देते हुए कहा, आप युवा हैं, आप विचारों और उत्साह से भरे हुए हैं, आप दुनिया को जीतना चाहते हैं, उसे अपने अधीन करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर से प्राप्त जीवन की सेवा करने के लिए, क्रिस्तीय मूल्यों को पूरी तरह से जीने के लिए विनम्रता, सेवा की भावना और मसीह के साथ एक गहन संबंध की आवश्यकता होती है। संत पापा ने कहा, केवल आंतरिक परिवर्तन ही आदतों और मानसिकताओं को बदलना संभव बनाता है, जो पर्यावरण के साथ एक नए तरीके से जीने में परिणत होता है। स्काउट जो प्रकृति में रहने, वस्तुएं बनाने, खेल खेलने और देखने और खुद को उन्मुख करने के आदि होते हैं, सृष्टि के प्रति सम्मान के साथ पेश आते हैं और इसलिए अपनी जीवन शैली के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। उधर आशा की जयंती वर्ष के कार्यक्रम के एजेंडे में प्रभावशाली व्यक्तियों इन्फ्लुएंसर्स की जयंती 28 से 29 जुलाई और युवाओं की जयंती 28 जुलाई से 3 अगस्त तक है। 146 देशों से करीब 5 लाख युवा रोम पहुंच रहे हैं। उन्हें 370 गिरजाघरों, 400 स्कूल भवनों, व्यायाम शालाओं और कई परिवार अपने दरवाजे खोलकर युवाओं को ठहराएंगे। प्रभावशाली व्यक्तियों इन्फ्लुएंसर्स की जयंती के पहले दिन यानी आज 28 जुलाई को सुबह 9 बजे वाटिकन के विया देला कोंचिलिया सियोने ऑडिटोरियम में करीब 1000 प्रतिभागियों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह के साथ सम्मेलन शुरू हुआ। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने डिजिटल मिशनरियों और कैथोलिक प्रभावशाली लोगों की जयंती का उद्घाटन के अवसर पर डिजिटल मिशन और कलीसिया का सुसमाचार प्रचार कार्य के विषय पर भाषण दिया। उद्घाटन समारोह में सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो प्रीफेक्ट मोनसिनियोर रिनो फिसिकेला और वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट श्री पाओलो रूफिनी उपस्थित थे। वाटिकन संचार विभाग के सचिव मोनसिनियोर लुचियो रुइस ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद डिसर्निंग लीडरशिप प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक जेसुइट फादर डेविड द्वारा आज जुड़े रहने के उत्प्रेरक के रूप में ईश्वर के वचन पर चिंतन प्रस्तुत किया गया। संस्कृति और शिक्षा विभाग के अवर सचिव जेसुइट फादर अंतोनियो स्पादारो ने नेटवर्क और अल्गोरिदम के युग में मिशन में धर्मशास्त्र के योगदान पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने डिजिटल संस्कृति में एक कलीसिया के रूप में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने के अर्थ को समझने का प्रयास किया। अगले दिन यानी 29 जुलाई पवित्र द्वार से होते हुए संत पेत्रुस महागिरजा घर में कार्डिनल तागले की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह होगा। उसके बाद तेजे समुदाय के साथ प्रार्थना होगी और शाम को पियासा रिसोर्जिमेंटो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ अंतिम उत्सव मनाया जाएगा। उधर भूख और बुनियादी वस्तुओं की कमी से उत्पन्न मानवीय आपदा के मद्देनजर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इसराइल ने गाजा में मानवीय संघर्ष विराम की घोषणा की और आटे, चीनी और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ से भरे पैकेटों की हवाई आपूर्ति फिर से शुरू कर दी। जॉर्डन और अमीरात ने फिर फिलिस्तीनी क्षेत्र में कम 25 टन सामान हवाई मार्ग से पहुंचाया, जबकि 150 दिनों के बाद मिस्र ने रफाह क्रॉसिंग के माध्यम से भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सहित 120 ट्रक मानवीय सहायता पहुंचाई। हालांकि इजरायली सेना ने स्पष्ट किया कि वह हमास के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी रखेगी, जिसने इस बात पर जोर दिया कि यह संघर्ष विराम तब तक निरर्थक रहेगा जब तक कि यह जीवन बचाने का एक वास्तविक अवसर न बन जाए। सहायता प्रवाह की अनुमति देने के लिए मानवीय संघर्ष विराम के बावजूद गाजा में संकट हर दिन लोगों की जान ले रहा है। पिछले 24 घंटों में ही 6 लोग भूख से मर चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि पट्टी में इजरायली हमलों में दर्जनों लोग मर रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे लोगों पर इजरायली सेना द्वारा की गई गोलीबारी में 2 बच्चों सहित कम से कम 13 फिलिस्तीनी मारे गए। उधर रविवार 27 जुलाई को पूर्वी कोंगो के एक गिरजाघर में इस्लामिक स्टेट समर्थित विद्रोहियों ने एक क्रूर हमला किया। रात करीब 1 बजे ADF के सदस्यों ने कोमांडा स्थित इमारत पर धावा बोल दिया, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए। कई घरों और दुकानों को भी जला दिया गया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।